अनिवार्य ओपनिंग नरेशन। एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम जेन हैमिल्टन के उपन्यास ए मैप ऑफ द वर्ल्ड पर बात करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू भी जाती है और झकझोर भी देती है।
बिल्कुल, और ये दिखाती है कि कैसे मतलब एक आम सी जिंदगी में अचानक सब कुछ बदल सकता है।
जेन हैमिल्टन की लेखनी में ये बात है भी। वो मिडवेस्ट अमेरिका के ग्रामीण जीवन को पकड़ती हैं, लेकिन उसके पर्दे के पीछे के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से दिखाती हैं।
हाँ, उनकी पहली किताब द बुक ऑफ रूथ को पेन हेमिंग्वे अवार्ड भी मिला था, और ए मैप ऑफ द वर्ल्ड जो 1994 में आई, इसे कई लोग उनकी बेहतरीन कृति मानते हैं।
और शायद इसलिए भी कि ओपरा विनफ्रे ने इसे अपने बुक क्लब में चुना था, उससे तो ये बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंची होगी।
हाँ, वो भी एक वजह है, पर इसकी असली ताकत तो कहानी में है, उसके किरदारों में है। विस्कॉन्सिन का एक काल्पनिक गांव है, प्रेरी सेंटर।
हाँ, डेयरी फार्मिंग वाला इलाका।
बिल्कुल, और कहानी उस दौर के कुछ मुश्किल सवालों को भी उठाती है, जैसे बच्चों की सुरक्षा या झूठे आरोपों का डर, कैसे समुदायों में भरोसा टूट जाता है।
तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि किरदारों का सफर कैसा रहा, क्या मुश्किलें आईं, और ये उपन्यास क्या सोचने पर मजबूर करता है।
चलिए शुरू करते हैं। कहानी के बिल्कुल केंद्र में है एलिस एंड हॉवर्ड गुडविन।
हाँ, पति पत्नी
और उनकी दो बेटियां हैं, एम्मा और क्लेयर। उनका अपना डेयरी फार्म है। एलिस स्कूल में लाइब्रेरियन और नर्स भी है।
अच्छा,
वो थोड़ी मतलब अब बुद्धिमान है, तेज है, पर शायद उस छोटे समुदाय के हिसाब से थोड़ी मुखर भी।
तो शायद पूरी तरह फिट नहीं होती वहाँ।
हाँ, कुछ ऐसा ही। वो खुद को अक्सर थोड़ा बाहरी महसूस करती है। हॉवर्ड जो है वो पारंपरिक किसान है,
जमीन से जुड़ा हुआ, शांत किस्म का।
एकदम एलिस का सहारा। उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों के साथ। उनकी एक पड़ोसी है थेरेसा कॉलिंस,
जिनसे उनकी अच्छी दोस्ती है।
हाँ बहुत गहरी दोस्ती है थेरेसा और उसके परिवार से। ये दोस्ती उनके लिए बहुत मायने रखती है।
तो सब कुछ सामान्य सा लगता है शुरुआत में।
हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर एक गर्मी की दोपहर आती है, शांत सी दोपहर, और वो दोपहर सब कुछ बदल देती है।
क्या होता है उस दिन?
एलिस अपनी दोस्त थेरेसा की छोटी बेटी लिजी की देखभाल कर रही होती है, 2 साल की बच्ची।
ओह,
बच्चे खेल रहे होते हैं फार्म पर। एलिस का ध्यान शायद कुछ पल के लिए कहीं और जाता है, और तभी वो भयानक हादसा हो जाता है।
नहीं,
लिजी फार्म के तालाब में गिर जाती है।
ओह नो।
एलिस उसे देखती है, उसे बाहर निकालती है, CPR देती है, पूरी कोशिश करती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है, लिजी की मौत हो जाती है।
ये तो बहुत ही भयानक है, एक पल में सब खत्म।
हाँ, और यहीं से उपन्यास उस बात पर आता है कि हमारी खुशियाँ कितनी नाजुक हैं। हमें लगता है सब हमारे कंट्रोल में है, पर ऐसा होता नहीं है।
ये सिर्फ हादसा नहीं था, बल्कि उस पूरी त्रासदी की शुरुआत थी जो एलिस की जिंदगी में आने वाली थी।
सही कहा, लिजी की मौत से पूरा समुदाय हिल जाता है। एलिस वो तो गहरे अपराध बोध में डूब जाती है।
खुद को दोष देने लगती होगी।
बिल्कुल, वो मानती है कि ये उसकी गलती है। हालांकि शुरू में थेरेसा और बाकी लोग उसे दिलासा देते हैं कि ये बस एक दुर्घटना थी, पर एलिस का अपना व्यक्तित्व, वो थोड़ा अलग थलग महसूस करना, उसे चैन नहीं लेने देता।
और यही शायद समुदाय का रोल भी बदलना शुरू होता है।
हाँ, यहीं से उपन्यास दिखाता है कि कैसे एक त्रासदी के बाद लोग किसी को देखने का नजरिया बदल देते हैं, खासकर अगर वो इंसान पहले से ही थोड़ा अलग माना जाता हो, जैसे एलिस।
उसका बुद्धिमान होना, उसका थोड़ा बेबाक होना, वो सब अब शक की वजह बन जाता है।
बिल्कुल, जो बातें पहले शायद सामान्य लगती थीं, अब वो अजीब लगने लगती हैं, और ये शक तब और भी भयानक रूप ले लेता है जब एलिस पर एक दूसरा इल्जाम लगता है।
एक और, वो क्या?
स्कूल का एक छात्र जो खुद भी थोड़ा परेशान है, वो एलिस पर यौन शोषण का एक मतलब धुंधला सा आरोप लगाता है।
क्या? ये तो बिल्कुल अलग बात है।
हाँ, लेकिन समुदाय के लिए ये जैसे आग में घी का काम करता है। कितना सच है, कितना बच्चे का भ्रम, ये साफ नहीं होता, पर
लोग दोनों घटनाओं को जोड़ देते हैं, एक दुखद हादसा और एक अस्पष्ट आरोप। ये कैसे हो सकता है?
यही तो उपन्यास दिखा रहा है, डर, पूर्वाग्रह और बलि का बकरा ढूंढने की मानसिकता। एलिस क्योंकि थोड़ी बाहरी थी, वो एक आसान निशाना बन जाती है, तर्क पीछे छूट जाता है, और जो लोग सोच रहे होते हैं वही सच लगने लगता है।
ये तो बहुत डरावना है।
बिल्कुल, और इन आरोपों की वजह से एलिस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है।
जेल सिर्फ एक आरोप पर?
हाँ, और जेल का अनुभव उसके लिए नरक जैसा होता है। उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान सब छीन लिया जाता है। उसे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे वो इंसान ही ना हो।
वो अपनी ही सच्चाई पर शक करने लगती होगी।
हाँ बिल्कुल, वो अपनी यादों पर, खुद पर शक करने लगती है। हैमिल्टन ने जेल के उस माहौल का, एलिस की उस मानसिक पीड़ा का जो वर्णन किया है वो बहुत असरदार है। वो दिखाता है कि सिस्टम कैसे किसी को तोड़ सकता है।
एलिस की यह यात्रा तो बहुत दर्दनाक है। वो दुनिया से तो कट ही जाती है, शायद खुद से भी।
हाँ, और जब वो आखिरकार रिहा होती है, वो भी किसी तकनीकी वजह से, पूरी तरह बरी होकर नहीं, तब तक वो पूरी तरह बदल चुकी होती है।
कैसी हो जाती है वो?
खामोश, सहमी हुई, जैसे उसका वजूद बिखर गया हो और वो उसे समेटने की कोशिश कर रही हो। उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब PTSD हो जाता है। वो लगातार डर, बेचैनी और उस बुरे अनुभव की यादों से जूझती रहती है।
ओह, अच्छा, एलिस की बात तो हुई, पर हॉवर्ड का क्या? उसका पति, उसने ये सब कैसे झेला?
हाँ, हॉवर्ड का किरदार दिखाता है कि ऐसे संकट में रिश्तों की वफादारी की असली परीक्षा होती है।
वो शांत किसान, उसकी दुनिया भी तो उजड़ गई होगी।
बिल्कुल, जब एलिस जेल में होती है, हॉवर्ड अकेले ही सब संभालता है। बेटियों की देखभाल, गिरता हुआ फार्म और सबसे बढ़कर उस समुदाय की नफरत और कानाफूसी।
उसका दर्द शायद उतना जाहिर ना हो, पर गहरा तो होगा ही।
हाँ, और उसका सबसे बड़ा त्याग तब आता है जब उसे एलिस के केस के लिए पैसे जुटाने होते हैं। उसे अपना पुश्तैनी फार्म बेचना पड़ता है।
उनका फार्म, वो तो उनकी पहचान होगी, उनकी जड़ें।
हाँ, कई पीढ़ियों की विरासत। वो सिर्फ जमीन नहीं थी, वो उनका सब कुछ था।
तो फार्म बेचना सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, वो तो जैसे उनकी पूरी दुनिया ही छिन गई, उनका नक्शा ही मिट गया।
एकदम, यही उपन्यास का शीर्षक भी है, अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। उनका वो नक्शा खो गया। हॉवर्ड का ये कदम उसके प्यार और उसकी हिम्मत को दिखाता है। वो उन आम लोगों जैसा है जो मुश्किलों में टूटते नहीं, खड़े रहते हैं, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो।
एक और किरदार है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, थेरेसा कॉलिंस।
हाँ, एलिस की सबसे करीबी दोस्त, जिसने अपनी बेटी को खोया है उसी हादसे में।
शुरू में तो वो एलिस के साथ ही होगी।
हाँ, शुरू में वो भी दुखी होती है, एलिस को सहारा देती है, लेकिन इतना बड़ा दुख इंसान को बदल देता है। थेरेसा का वो असहनीय दर्द धीरे धीरे शक में बदलता है।
और फिर शक इल्जाम में।
हाँ, वो अपनी बेटी की मौत की कोई वजह ढूंढना चाहती है, कोई मतलब निकालना चाहती है, और उस दुख की धुंध में उसे एलिस ही वजह नजर आने लगती है। ये देखना बहुत दुखद है कि कैसे दुख हमारी सोच को, हमारी यादों तक को बदल सकता है।
और वो कोर्ट में एलिस के खिलाफ गवाही दे देती है।
हाँ, ये एक तरह का धोखा लगता है, लेकिन उपन्यास उसे पूरी तरह विलेन नहीं दिखाता। शायद वो जानबूझकर बुरा नहीं करना चाहती, पर उसका दिल इतना टूटा हुआ है, वो इतनी हताश है कि उसके काम का अंजाम बहुत बुरा होता है।
ये बहुत जटिल है। वो खुद भी एक पीड़ित है, पर उसका काम एलिस के लिए विनाशकारी साबित होता है।
बिल्कुल, यही इस कहानी को और मानवीय बनाता है।
थेरेसा का दुख समझना फिर भी शायद मुमकिन है, पर पाठक के लिए शायद उसे माफ करना आसान नहीं होता।
सही कहा। और फिर है वो पूरा समुदाय, प्रेरी सेंटर, वो भी एक तरह का किरदार ही है।
कैसे?
वो दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा आपस में जुड़ा हुआ कस्बा एक त्रासदी के बाद शक, अफवाहों और गुस्से का अड्डा बन जाता है।
ये दिखाता है कि समुदाय का चेहरा दोहरा होता है, वो सहारा भी दे सकता है
और बहिष्कार भी कर सकता है, खासकर अगर कोई थोड़ा अलग हो जैसे एलिस। समुदाय अपने डर और अपनी असहजता को एलिस पर डाल देता है। ये ग्रुप थिंक, मतलब भीड़ की सोच का एक खतरनाक उदाहरण है, जहां सच पीछे रह जाता है और भीड़ का फैसला हावी हो जाता है।
उपन्यास की कहानी को अगर देखें तो क्या उसे हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए?
हाँ, मोटे तौर पर तीन हिस्से हैं। पहला है द फॉल, यानी पतन। इसमें गुडविन परिवार की सामान्य जिंदगी, एलिस का व्यक्तित्व, थेरेसा से दोस्ती, ये सब दिखाया गया है।
और फिर वो हादसा।
हाँ, लिजी के डूबने की घटना, उसका सदमा, दुख, और यही शक के बीच पड़ने लगते हैं। फिर वो दूसरा, आरोप और गिरफ्तारी,
जहाँ व्यक्तिगत त्रासदी एक पब्लिक तमाशा बन जाती है।
यहीं से धारणा और सच्चाई का टकराव शुरू होता है।
बिल्कुल।
दूसरा हिस्सा है दी ऑर्डियल, यानी कठिन परीक्षा। इसमें फोकस हॉवर्ड पर जाता है। हम उसके संघर्ष देखते हैं, बेटियों को संभालना, केस लड़ना, फार्म बचाना, समुदाय का सामना करना
और मुकदमा
मुकदमा एक बुरे सपने जैसा है। एलिस की हर बात का गलत मतलब निकाला जाता है। थेरेसा की गवाही जैसे आखिरी चोट होती है। एलिस दोषी पाई जाती है, फार्म बिक जाता है, उनका नक्शा खो जाता है।
ये हिस्सा सिर्फ परिवार की कहानी नहीं, ये न्याय प्रणाली पर भी सवाल उठाता है ना? कैसे डर और अधूरी जानकारी सच को छुपा सकती है।
सही कहा। और तीसरा हिस्सा है दी आफ्टर लाइफ, यानी बाद का जीवन। कहानी वापस एलिस के नजरिए पर आती है। वो जेल से बाहर है पर आजाद महसूस नहीं करती।
जख्म भी भरे नहीं है।
बिल्कुल। परिवार कहीं और चला जाता है, गुमनामी में। एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, पर यह बहुत धीमी दर्दनाक प्रक्रिया है। एलिस का PTSD, शर्म, डर, हॉवर्ड का धीरज, बच्चों पर असर, सब कुछ बहुत बारीकी से दिखाया गया है।
इसी हिस्से में वो सीन आता है जब एलिस की मुलाकात थेरेसा से होती है मॉल में।
हाँ, सालों बाद। अचानक हवा में बहुत तनाव होता है, कहाँ अनकहा दर्द, पर शायद साझा दुख और माफी की एक बहुत हल्की सी उम्मीद भी।
लेकिन ये कोई आसान सुलह नहीं होती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत असलियत के करीब लगता है, अधूरा सा। शायद यही असली जिंदगी में होता है। ये दिखाता है कि पुराने नक्शे पर वापस जाना नामुमकिन है। उन्हें अब एक नया अनिश्चित सा नक्शा बनाना होगा, धीरे धीरे।
तो ये उपन्यास कई गहरे विषयों को छूता है, जैसे एक तो यही कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है और हमारा नियंत्रण कितना कम।
हाँ, और दूसरा वो धारणा बनाम सच्चाई वाली बात, कैसे लोगों की सोच असलियत पर हावी हो सकती है।
अपराध बोध और न्याय का सवाल भी है, कानूनी न्याय और नैतिक न्याय, क्या वो हमेशा एक होते हैं? एलिस कानूनी तौर पर बाहर है, पर क्या वो कभी खुद को या समाज की नज़र में पूरी तरह बेगुना महसूस कर पाएगी?
और समुदाय की वो दोहरी भूमिका, सहारा भी और सजा भी, खासकर उनके लिए जो भीड़ से अलग हों, अलग होने की कीमत।
दुख और माफी के रास्ते भी कितने जटिल हैं। हर कोई दुख को अलग तरह से जीता है, और माफी वो अक्सर अधूरी ही रहती है।
और आखिर में रिश्तों की परीक्षा। हॉवर्ड और एलिस का रिश्ता इस आग से गुजरता है। ये दिखाता है कि कैसे संकट रिश्तों को या तो बिखेर देता है या फिर शायद एक नई, ज्यादा मजबूत बुनियाद देता है।
उपन्यास की शैली की बात करें तो वो बदलता हुआ नजरिया बहुत प्रभावशाली है। पहले एलिस की आवाज में,
हाँ, फर्स्ट पर्सन, हम सीधे उसके अंदर के तूफान को महसूस करते हैं। फिर कहानी बाहर से थर्ड पर्सन में हॉवर्ड पर फोकस करती है,
जिससे हमें बाहरी तबाही का अंदाजा होता है।
बिल्कुल। और फिर वापस एलिस के फर्स्ट पर्सन पर, ताकि हम उसके ठीक होने की धीमी प्रक्रिया को महसूस कर सकें। ये अदला बदली हमें त्रासदी के हर पहलू को दिखाती है, अंदरूनी भी और बाहरी भी।
और इसमें प्रतीक भी हैं, जैसे आपने बताया नक्शा।
हाँ, वो फार्म का हाथ से बना नक्शा, उनकी दुनिया, पहचान, नियंत्रण का प्रतीक। उसका खोना मतलब सब कुछ बिखर जाना। और वो तालाब
जो पहले खुशी की जगह थी फिर मौत की जगह बन गई।
हाँ, वो जीवन के दोहरेपन को दिखाता है, सुंदरता और खतरा कैसे साथ साथ चलते हैं।
विडंबना भी है कहानी में। एलिस जो बच्चों की देखभाल करती है, उसी पे बच्चों से जुड़ा आरोप लगता है। जो समुदाय पहले अपना था वही पराया हो जाता है।
और जेन हैमिल्टन की भाषा बहुत काव्यात्मक भी है और सीधी चोट करने वाली भी। वो गांव के माहौल को, पात्रों की भावनाओं को ऐसे लिखती हैं कि हम महसूस कर पाते हैं। एक उदासी, एक तनाव पूरे उपन्यास में बना रहता है।
तो कुल मिलाकर एम अप ऑफ द वर्ल्ड हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक पल में बदल सकती है, और समाज का फैसला कभी कभी ही सच्चाई से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये दिखाता है कि डर और शक हमें कैसे एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं।
हाँ, और साथ ही ये इंसान की हिम्मत की कहानी भी है, सबसे बुरे हालात में भी टिके रहने की, अपने बिखरे हुए वजूद को फिर से जोड़ने की कोशिश करने की, भले ही निशान हमेशा रह जाएं। ये पूरी तरह ठीक होने की नहीं, बल्कि एक नए रास्ते पर चलने की कहानी है।
अनिवार्य समापन पंक्ति या संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एगेथर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।